ओम
ओम शांति। परम श्रद्धेय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी हम सबसे जुड़ चुकी हैं। हम सबकी तो आज लॉटरी लग गई। जो दीदी न्यूयॉर्क से आप सबको ब्लेसिंग देने के लिए, वरदानी महावाक्यों से भरपूर करने के लिए पहुंचे हैं, हम सब एक हाथ हिलाकर दीदी जी का वेलकम करते हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। आदरणीय परम श्रद्धेय मोहिनी दीदी जी हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका हैं, हम सबकी मुखिया हैं और आज हम सबको अपनी शुभाशीष प्रदान करेंगे। मैं दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि दीदी जी आप हम सबको अपने वरदानी बोलों से, ब्लेसिंग से भरपूर करें। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। होना तो शांति वन में, मधुबन में, मन तो वहीं रहता है, परंतु सेवा अर्थ दूसरे देशों में आना पड़ता है। तो अभी न्यूयॉर्क में है, यहाँ सवेरे से बहुत बहुत स्नो हो रही है, सारे पेड़ पौधे सब सफेद सफेद, बहुत सुंदर दृश्य है। देखते हैं आपको दिखा सके तो। राजू भाई ने बहुत ज्ञान युक्त, धारणा युक्त बातें हमें बताई। राजू भाई का तो जीवन ही बचपन से अभी तक बाबा के लिए, सेवा के लिए और मुरलियों की सेवा, पुष्प पत्र भेजने की सेवा, बहुत सेवाएं आप करते हैं। जब सुना कि आप लोग शांतिवन में आपकी टर्न है, तो बहुत मन कर रहा था कि आप लोगों को देखें, आप लोगों से कुछ रूह रेहान करें। तो बहुत खुशी है कि आप सबको देख पा रहे हैं। और ये तो हमें पता ही है, जैसे राजू भाई ने कहा कि समय तो नाजुक है, इसमें अपनी स्थिति की शक्ति, स्थिति जैसी होती है वो शक्तियां हैं हमारी। बाबा हम बच्चों को कई तरह के अभ्यास बताते हैं, जितना जिस बात का अभ्यास किया जाता है उतनी हमारी स्थिति बनती है और उतनी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो उसमें भी विशेष तौर से इस मास में बाबा के अव्यक्त इशारे कि कर्मातीत बनो, न कर्म का बंधन हो, न कर्म का जो रिजल्ट है उसका बंधन हो। हर बंधन से मुक्त होंगे तो कर्मातीत होंगे। इसमें बाबा रोज कोई ना कोई धारणा के लिए कहें, शक्ति के लिए इशारा देते हैं। मुझे कल का इशारा बहुत अच्छा लगा, जो आज के अभ्यास के लिए है, और वो है समेटने की शक्ति। बेशक इसमें कछुए का एग्जाम्पल दिया है, पर वो कछुए का एग्जाम्पल संकीर्ण करने की शक्ति है। पर बाबा ने इतना सूक्ष्म बताया जिसमें तीन स्टेप्स है अभ्यास के लिए। बाबा ने कहा संकल्पों के विस्तार को समेट करके एक संकल्प में टिको। वो संकल्प हो सकता है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सिर्फ मैं आत्मा नहीं हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, अपना कोई ना कोई एक अनादि गुण लेकर के उस एक संकल्प में रहो। तो उस पहले संकल्पों को समेटना, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। हम लोग हमेशा समेटना बाहर का सोचते हैं ना, अपने आसपास जो हमारी वस्तुएं हैं या कुछ भी समेटो, परंतु बाबा कहते हैं संकल्पों को समेट कर एक संकल्प। बहुत अच्छा अभ्यास है, मैं सवेरे से ये कर रही थी अभ्यास, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, क्योंकि जब एक संकल्प है तो वो मन मना भाव की स्थिति है, और उस एक संकल्प जो है वो साइलेंस की शक्ति है। फिर बाबा ने कहा कि एक संकल्प और दूसरा फिर उस संकल्प के आधार पर कोई भी एक स्थिति कहो तो शांत स्वरूप है तो शांति की स्थिति है, परंतु ये तब हो सकता है जब आत्मिक स्थिति है। तो ये तीनों बातों को मिला करके समेटने की शक्ति, परंतु समय ऐसा है कि हर प्रकार से हमें समेटना चाहिए, चाहे अपनी वस्तुएं हैं, चाहे अपना धन है, किसी भी तरह से समेटो। जो हमें सफल करना है, किस तरह से हमें अपनी जीवन को, मुझे याद है कि एक बार दिल्ली में भूचाल आ रहा था और बार बार भूचाल आ रहा था, जापान में एक बार, वहां भी बहुत भूचाल आते, तो हर एक ने एक छोटा थैला रखा हुआ है, उस थैले में एक दो कपड़े, अपनी जो जरूरत का सामान है, थोड़ा सा 100-100 के नोट नहीं, 10-10 के रुपए, क्योंकि कहते हैं जितने छोटे नोट होते हैं ना, तो किसी को चाय लेनी है, किसी को देना है, 100-100 के नोट तो नहीं देंगे ना, तो थोड़े वो रखे उन्होंने, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख लिया कि अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो थोड़े बादाम खा लेंगे, थोड़े पिस्ते। तो जापान में भी तो सभी ने एक छोटी सी बैग तैयार रखी थी कि जैसे ही हमको भागना पड़ेगा घर से तो मेरे पास एक छोटी बैग होगी। तो बाद में जब थोड़ा डर कम हुआ भूकंप का, तो सबको मन में ये लगा कि देखो यही तो मुझे चाहिएगा टाइम पर, सारा घर लेके तो नहीं निकलेंगे ना। मुझे याद है एक बार गया ना मैं भी, बाबा के घर में आग लगी, तो जो बहन थी वो भोग बना रही थी, मालपुरा भोग बना रही थी, पर इतने में फ्लेम आया आग का बहुत जबरदस्त, लकड़ी के मकान होते हैं वहां, बहुत बार पेंट किया होता है तो आग फैलने में देर नहीं लगती है। तो सभी सोचने लगे, क्लास चल रही थी, कि क्या निकालें। तो कोई कहने लगा फ्रिज ले लो, कोई कहता है बाबा की मुरलियां ले लो, हर एक अपना अपना कि ये ले लो ये ले लो, पर समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या लेना है हमको। तो इसलिए जो समेटना है बाहरी रूप से भी, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जो मेरी पर्सनल जरूरत की चीजें हैं वो एक अलमारी में रख के, बाबा का तो स्टॉक बहुत बड़ा होता है सेंटर पर, फिर दो बहनों को कहती हूँ ये सारा स्टॉक है आप लोग संभालना। फिर एक बार दो बहनों को अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उसने समेटना शुरू किया कि मुझे क्या रखना है और क्या बाबा की सेवा के लिए है। तो बाहरी रूप से भी हर बात में हमें समेटना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अभ्यास समय अशरीरी बनने का, विदेही बनने का बहुत अच्छा अभ्यास है, मैं आत्मा न्यारी हूं, ये मेरी देह है। देखो देह से भी संबंध तो है ना हमारा, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो दोनों का महत्व तो है ना। इसलिए एक बार बाबा ने कहा था कि पूरा ज्ञान है आत्मा और शरीर दोनों का। तो आजकल तो खासकर प्रकृति जीत कहे या शरीर के बहुत तरह के हिसाब किताब अचानक निकल आते हैं। कल परसों हमारी एक बहन क्लास में आ रही थी, घर से निकली तो सीढ़ी पर गिर गई। उसने कहा कोई बात नहीं है, कार चलाई और सेंटर पर पहुंच गई। पहुंची तो बहुत पैर फूलता गया, तो फिर एम्बुलेंस बुलाई, उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो पता चला फ्रैक्चर है। यहाँ क्रिसमस के प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसके पास भी प्रोग्राम था। अचानक कुछ भी कभी भी शरीर को कुछ हो सकता है, तो मैं तो अशरीरी अवस्था का बहुत अभ्यास करती हूँ। मैं भी देही हूँ, ये तो देह है, ऐसे न्यारी हूँ। परंतु कभी भी जो कुछ भी है शरीर को, उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो मन में चली जाती है ना, चाहे दर्द चाहे बीमारी, तो डबल हो जाती है ना बीमारी। हमारा मन, हमारी बुद्धि न्यारी प्यारी रहे, और एकदम जैसे ऐसा लगे अचानक कुछ भी होता है। देखो शरीर एक कार है ना, मोटर है, रिपेयर तो करानी पड़ती है ना। दादी जानकी हमको हमेशा कहती थी कि बाबा आपकी गाड़ी फिक्स कर रहा है, इससे आप ज्यादा सेवा कर सको। तो अंदर में ऊंच संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और निर संकल्प, बाबा ये फिक्स करा रहा है। कुछ भी होती है, छोटी मोटी सर्जरी होती है, छोटा मोटा कुछ होता रहता है, बाबा फिक्स करा रहा है क्योंकि ज्यादा सेवा कर ली है। एक बार एक बहन दादी के पास गई तो उसका चेहरा थोड़ा सा इतना प्रफुल्लित नहीं था, तो दादी ने कहा क्या हुआ? बोला मेरे घुटने में बहुत दर्द है। बोला मुंह में तो दर्द नहीं है ना, घुटने में दर्द है ना, तो मुंह पर क्यों ऐसा, मुंह क्यों बनाया, मुंह क्यों छोटा हो गया? तो दादी जानकी हमको हमेशा सिखाती थी कि चेहरा कभी भी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, सेवा करने के लिए चेहरा और चलन। तो सदा मुस्कुराता, प्रफुल्लित, उमंग उत्साह वाला, मधुरता का चेहरा ऐसे रिफ्लेक्ट करे। इसलिए आपने देखा दादी गुलजार हॉस्पिटल गई, जो भी जाते हैं तो दादी कहती थी ये तो तीर्थ यात्रा है, और आप किस, आप सेवा के निमित्त बनेंगे। मेरा भी ऐसा अनुभव है कि डॉक्टर्स की सेवा होती है, वहां के नर्सेस की सेवा होती है, इतने तक कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के होते हैं वो भी आते हैं मिलने के लिए, सेवा होती है। तो दो संकल्प मन में रखो, एक तो ये रखो कि सेवा के निमित्त आई हूं मैं, ये बात इसलिए आई है कि थोड़ा शरीरीपन का और अभ्यास करें। तो इसलिए ये जो कर्मातीत स्थिति है, ये जीवन मुक्त स्थिति है, और संगम युग का, सत्युग का जो पहला जन्म है वो ये संगम युग का है ना, 21 जन्म है, तो 8 सत्युग के, 12 त्रेता के और 1 संगम युग का। तो संगम युग पर जीवन मुक्ति की स्थिति वो है कर्मातीत स्थिति। बिना कर्मातीत स्थिति के जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। अभी जनवरी मास आ रहा है, ब्रह्मा बाबा को हम बहुत याद करेंगे, तो बाबा की जीवन मुक्ति की स्थिति थी, क्योंकि बाबा को कोई भी, देखो जो पिछला कर्म होता है ना उसके संस्कार बनते हैं, और संस्कार फिर अभी कर्म कराते हैं, तो वो चेन हो जाती है, जैसे एक बंधन हो जाता है पिछले कर्मों के संस्कार। और अगर अभी हम लोग संस्कार वश कर्म करते हैं, अभी हमारा स्वभाव संस्कार वश है, अभी हमारा कर्म संस्कार वश है, तो वो बंधन चल रहा है। जो पिछला है वो अभी फिर वैसे ही कर्म हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव संस्कार पर अटेंशन दें, ये मेरे में आदत है, मेरा ऐसा बोलने का स्वभाव है, मैं रिएक्ट कर लेती हूँ बहुत जल्दी। मैं सबको कहती हूँ कि एक्टर हो कि रिएक्टर हो, एक्टर तो अपना पार्ट बजाता है, वो रिएक्ट तो नहीं करता ना। कहते हैं एक बार रामलीला हो रही थी दिल्ली में, तो कुछ ऐसा पता लगा रामचंद्र जी को कि रावण को थोड़े ज्यादा पैसे मिले, तो उसने सोचा कि मैं अभी इसको करता हूँ कुछ, तो इसलिए वो भी रावण की तरह एक्ट करने लगा, तो सारी रामलीला बिगड़ गई। इसको क्या हो गया, क्योंकि रिएक्ट कर रहा था ना। तो ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मैं किसके लिए निमित्त हूं, ये अटेंशन रख के अपना पार्ट बजाते रहे, न कि संस्कारों वश रहे। क्योंकि ये जो कर्म बंधन है, समझा आपने कि कर्म किए थे उसके संस्कार बढ़े हैं, फिर उन्हीं संस्कार से वो हमें कर्म करा रहे हैं। तो हमारा स्वभाव मधुरता का तो हो ही, नम्रता का, सब गुणों युक्त, परंतु उसके साथ साथ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम संस्कारों बस अपने स्वभाव और अपने कर्म न करें, यही कर्मातीत स्थिति है। तो थोड़ा अटेंशन से देखेंगे ना आप, अपना चार्ट रखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप देखो संस्कार मैंने से कर्म करा रहे हैं। ये जो बात मैंने बोली ना, ये संस्कार बस बोली। तो एक कर्मातीत स्थिति ही जीवन मुक्त स्थिति है, और अगर संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं हुआ तो सत्युग में कैसे जाएंगे? क्योंकि जो स्थिति हमारी संगम युग के अंत में होगी वो सत्युग में होगी ना। एक बहन ने मुझे कहा मैं सत्युग में बहुत खुश होगी, मैंने कहा जितनी खुशी यहां है उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो अंत में हमारी स्थिति होगी उसी की तो आदि होगी ना। तो ऊंच प्रारब्ध पाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए, श्री कृष्ण के साथ रास रसन रचाने के लिए कर्मातीत अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था बहुत बहुत आवश्यक है। तो उससे क्या होगा, सभी मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे, और वातावरण हमारे स्वभाव और संस्कार से वातावरण और व्यवस्था, कभी भी किसी बात में दो आत्माओं का जब मतभेद होता है तो वातावरण नहीं अच्छा होता है। और आजकल जो सेवा होती है, हर एक को मदद मिलती है, वो वातावरण की, हर सेवा केंद्र पर आपस में मिलनसार, संस्कारों का मिलन हो, सभी अपने पुरुषार्थ की धुन में रहे, कर्मातीत बनने की धुन में रहे, तो वहां के वातावरण में बाबा के बच्चों को बहुत पालना मिलती है। दादी जानकी कहती थी दो आत्माएं निमित्त या कोई भी विद्यार्थियों में कोई भी मतभेद या संघर्ष होता है तो जैसे डिवोर्स हो जाता है ना, तो बच्चे भटक जाते हैं। बहुत फैशन हो गया है, पहले भारत में इतना नहीं होता था, अभी कभी कभी होता है कि अलग हो जाते हैं बाप, तो बच्चे बेचारे भटक जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा के बच्चों के लिए हम इतना श्रेय का, इतने सम्मान का, सहयोग का, रूहानी स्नेह हो, एक दूसरे को सम्मान दो और सदा सहयोगी रहो, तो उससे वातावरण इतना अच्छा होगा कि हर बाबा का बच्चा जो भी उस बाबा के घर में आएगा उसको बहुत अच्छा अनुभव होगा, एक तरह की वैराग्य वृत्ति कहो, निर्वृत्ति कहो, उसमें जगेगी, पुरुषार्थ का उमंग उत्साह आएगा और उन्हें अनुभव होगा कि बाबा की पालना मिल रही है। आजकल एक ही शब्द सुने में आता है कि पालना रही है। अभी हम लोग ने एक साधना का ग्रुप बनाया है जो इसलिए मैं यही कहूंगी कि कर्मातीत जीवन मुक्त स्थिति अभी बनाए, जो सत्युग में हम सभी रासलीला तो करेंगे, संबद्ध रहेंगे, ऐसा लक्ष्य रख के अगर हम पुरुषार्थ करेंगे। आप सभी बाबा के मिलन के लिए आए हैं, जितना अव्यक्त स्थिति होगी अभ्यास करते रहिए, उतना बाबा से अव्यक्ति मिलन से बहुत शक्ति मिलेगी। मिलन करने आए हैं तो कुछ वर्षा तो लेके जाएंगे ना, सर्व शक्तियों का वर्षा पूरी तरह से हमें लेके इस मिलन से वापस अपनी सेवा पर जाना है। अब देश में हम सबके बीच में नहीं है, परंतु फिर भी मेरी उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भी सभी निमित्त बहने इंदौर से, सभी भाई बहनों को बाबा की भी मेरी भी बहुत बहुत याद प्यार और शुभकामनाएं हैं। और बहुत खुशी हुई आप सबको देखा और आप सबसे मिले। अभी कुछ क्षणों के लिए बाबा की याद में अश्रेरी स्थिति कर्मातीत जीवन मुक्त। ओम शांति।
फुल दृष्टि देंगे आप सभी दीदी से, शक्तिशाली वाइब्रेशन और दृष्टि प्राप्त करें, इसलिए सभी बहुत अटेंशन से साइलेंस में रहें। उसके बाद वहां जो स्नो है वो भी आप सबको दिखाया जाएगा, तो पहले हम सभी दृष्टि लेते हैं।
देखो आप अब न्यूयॉर्क घूम घूम
के आ गए। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी दूर से भी दीदी जी ने हम सबको अपने वरदानी बोल से, शक्तिशाली वाइब्रेशन से, किया. थैंक यू दीदी जी. इंदौर जोन और भोपाल जोन के सभी भाई बहनों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया. और आप सभी देखें स्क्रीन पर, वहाँ जो स्नोफॉल है, बर्फबारी हो रही है, वो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं पेड़ों पर कैसे बर्फ जमी हुई है.